हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृंदावनम रम्याघाचिदुपासना ब्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी भगवान की महिमा एक अद्भुत तरीके से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि रात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादयः येनेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादय येनेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी भगवान के भक्तों के चरणों पर आश्रित होने वाले जो पापी जन हैं, उनके पाप किस तरह से नाश होते हैं उनके विषय में कहते हैं, ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया, यानी कि या तो वो किरात हो। किरात का क्या मतलब है? वो सब शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत डिटेल से बताएंगे कि किरात कौन है और होण कौन है, पुलिंद्र कौन है। ये सारे, जैसे किरात का मतलब है प्राचीन भारत का एक प्रांत, होण जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र का मतलब होता है दक्षिणी भारत प्रांत, पुलिंद का मतलब होता है ग्रीक, पुलकशा मतलब अन्य प्रांत, आभीर मतलब प्रांची सिंध का एक भाग, शुंभा अन्य प्रांत, यवना तुर्क कस आदया मंगोल का प्रांत। ये नीच पापा, वास्तव में ये सब पापी हैं, अलग अलग प्रकार के। ये कोई वैष्णव नहीं है, कोई भक्त नहीं है, जिन्होंने हर प्रकार के अपराध किए ना, अलग अलग प्रकार के पापियों के नाम बताए गए। और इसके अलावा भी ये नीच पापा और भी अनेक अनेक पाप करने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो अपने अपराधों का शमन चाहते हैं, अपने अपराधों की शुद्धि चाहते हैं, इतने घोर अपराध जिनके बदले में वो करोड़ों करोड़ साल तक नरकों में जाना पड़ेगा, ना जाने कितनी दुखदायक योनियां और स्थितियां उनको स्वीकार करनी पड़ेंगी, तो ऐसे पापियों को भगवान की शरण में भी जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में जाकर उनके पाप नष्ट होंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। जैसे अगर अचानक से हमारे घर में चूहा आ जाए और चूहे को मारने के लिए हम सोचें कि अब क्या करें, ये चूहा तो हर शय को खराब कर रहा है, ऐसा करता हूँ मैं अपने घर में एक शेर पाल लेता हूँ, शेर पालूंगा तो चूहे को खा जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, अरे अरे चूहे को मारने के लिए शेर को पालने की क्या जरूरत है, बिल्ली काफी है। तो उसी तरह भगवान की भक्ति से तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है, साक्षात भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है, जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। पापों से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं है। ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया, यदपाश्रया यानी कि उनके चरणों के आश्रित जो भक्त हैं, उनके आश्रय में यदि कोई आ जाता है, समझ में आ रहा है, भगवान के चरण कमलों के शुद्ध भक्त जो हैं, उनके चरण कमल यदि कोई पकड़ लेता है, तो उनके चरण कमलों के आश्रित होने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान जिनका नाम लेने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, उन भक्तों के अंदर इतना पावर आ जाता है, इतनी प्योरिटी आ जाती है, इतना तेज आ जाता है कि केवल उनके दर्शन करने से, उनके चरणों को प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए कि वो भगवान जिनकी चरणों की सेवा करने से उनको इतना प्रताप मिल रहा है, उन भगवान को प्रणाम करने से हमें कितना लाभ मिलेगा। हाँ, समझने की बात है कि ये सारे संसार में जिसके पास जो भी क्वालिटी है वो भगवान की कृपा से है। जब उन्होंने भगवान ने उनके ऊपर कृपा की तो उनको ये क्वालिटी मिली, और उस क्वालिटी के कारण वो कितने अद्भुत कार्य करते हैं। जीव चमत्कार कर सकता है, मैरिकल्स कर सकता है यदि भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे चमत्कार, अभी आप सोचिए 70 साल का बूढ़ा वो जाता है अमेरिका जैसे कंडम से उसमें कंट्री में, और वहां पर कुछ नहीं लेके जाता, हाथ खाली लेके जाता है, हाथ भी कांप रहे होते हैं, शरीर भी कांप रहा होता है, और मन में केवल इतना, कृष्णा तुमने मुझे यहाँ पर भेजा है ना, अब मेरे द्वारा जो करवाना है करो, मैं तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ। और आज हम देखते हैं ज्वलंत प्रमाण है, पृथ्वी के एक एक नगर और गांव में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजा दिया। ऐसे ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी जैसे शुद्ध भक्त जो है ना, इनके केवल दर्शन करने से, उनके केवल आज श्री प्रभुपाद जी अपने शास्त्रों के द्वारा हमारे साथ हैं। हम यदि उनके शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, और अगर हम इन शास्त्रों के एक एक शब्द के विषय में, एक एक शब्द को दृढ़ता से स्वीकार करते हैं तो समझो हमने उनके चरणों को पकड़ लिया है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर सुखदेव कहते हैं शुद्ध्यन्ति, आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। सारे जितने भी अपराध हमने किए हैं जीवन में केवल एक शुद्ध भक्त के सानिध्य से प्योर हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं हम। तो ऐसे भगवान जिनके भक्तों के अंदर इतना पावर है, तस्मै प्रभविष्णवे नमः, ऐसे शक्तिशाली भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने उत्तर का प्रारंभ करने से पहले भगवान की शक्ति के विषय में बता रहे कि भगवान जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ उनके तो केवल शुद्ध भक्तों का भी यदि हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है या उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो उनके अंदर भी शक्ति आ जाती है कि वो मैरेकल कर सकते हैं। तो फिर मैं तो साक्षात उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक मैरिकल करना है, एक जादू करना है, एक अद्भुत कार्य करना है। कि आपने मुझसे पूछा है कि भगवान के विषय में बताओ कि भगवान ने कैसे सृष्टि का उत्पन्न किया, कैसे सृष्टि बनाई। तो एक जीव तो बाद में आता है, भगवान पहले आता है, और सृष्टि पहले से बनी होती है। मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं जो भी बोलूंगा वो केवल भगवान की कृपा से ही बोलूंगा, इसलिए पहले मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। अनुवाद देखिए, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभी शुंभा यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहते वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति चिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक एक शब्द को एक डिटेल से बताते हुए वो बता रहे हैं, किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग होंगे आगे भी जाकर, लेकिन फिर भी अगर वो भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ेंगे ना तो शुद्ध हो जाएंगे। आगे कहते हैं होण, होण का मतलब होता है पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग होण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति होण कहलाती है, जो पर्वतों में रहते हैं या जर्मनी में रूस में जो आदिवासी रहते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता है शास्त्रों के विषय में, ऐसे लोग भी। आंध्र का मतलब होता है यह दक्षिण भारत के एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है, या आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है आंध्र। पुलिंद, क्षमा, पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 में पुलिंद नामक प्रांत का के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश के को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भी भारत के प्रांतों में से एक था और इसके निवासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा जाता। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को ना मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हीदंस कहलाते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने, क्योंकि अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, इसी पुलिंद कहलाने लगे। उसके बाद है आभीर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये आभीर गण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में इन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे सब गए सब आभीर देश कहलाए। शुंभा या कंक, ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्रों में से एक का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। अतीव तुर्क यवन हैं, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्ण महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता था। पश्चिमी यवन करण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खड़ी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होंठ पर ठिगने केश उगते हैं, वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त हो सकते हैं, यदि वे भगवत भक्तों की शरण ग्रहण कर लें। ईसा मसीह तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों को नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभारंभ किया गया है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनायक उलझन में कोई रुचि नहीं होती है। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो और यह कि मनुष्य को मूल्यवान जीवन ऐसी सभ्यता का अनुकरण करने में व्यर्थ न हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर सारी जो कंट्रीज हैं उनका राज्य किनको सौंपा गया है, ऐसे जो पॉलिटिक्स होते हैं वो उल्टा लोगों को कोई ऐसी शिक्षा नहीं देते, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि लोग जो है वो भगवान की ओर जाएं, और ना ही कुछ उनका आध्यात्मिक प्रकृति होती है। जैसे यहाँ देखते हैं कि वैसे तो सब जानते हैं कि शरीर से ज्यादा महत्व किसका है, आत्मा का है, सब जानते हैं ना। कोई एक मृतक शरीर यहाँ पर पड़ा हो और एक जीवित शरीर पड़ा हो तो किसका ज्यादा महत्व होगा? मृतक शरीर को तो आप जला दोगे, जीवित शरीर को सुरक्षित रखोगे ना, तो इस मृतक शरीर में और जीवित शरीर में फर्क क्या है? सिर्फ आत्मा का ही है ना, तो ज्यादा इम्पोर्टेंस कौन है? आत्मा है ना। लेकिन फिर भी जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे कारोबार है, चाहे कुछ भी है, वो सब किसके लिए है? अच्छा कपड़ा पहनना शरीर के लिए, अच्छा घूमने जाना शरीर के, अच्छा खाना खाना शरीर के लिए, सब शरीर की ही एजुकेशन दी जाती है ना। वो क्यों? क्योंकि भगवत भक्तों के साथ हमारा संबंध नहीं है। जब हम भगवान के भक्तों के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको ज्यादा आनंदित रखने का आनंद रखने का प्रयास करना चाहिए जो केवल भगवत भक्ति से ही संभव है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सारा जो राजनीतिक काम है ना, उसमें भक्तों को भी इंटरेस्ट नहीं होता है। भक्तों का क्या इंटरेस्ट होता है कि सामान्य लोग अपने जीवन को बर्बाद न करें और भगवान की भक्ति करें। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अंततो गत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो, अतएव यदि राजनीति के लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम यत शब्द से प्रारंभ की है, उसी प्रकार भगवान चैतन्य भी स्तुति की है कि केवल भगवान के पवित्र नाम का यशोगान करने से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत ही मिट जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, यदि जीवों के हृदय का मार्जन करना है, उसे साफ करना है, तो उसका एक ही तरीका है, हरिनाम संकीर्तन। तो उसके अंदर की जो गंदगी है वह तुरंत ही मिट सकेगा और गलत फहमी की इस अग्नि के बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी उसके पीछे पीछे आएंगे। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये सब होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, इसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे सामान्यता वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना देता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। श्रीमद् भगवत गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवान का भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्री शूद्र या वैश्यों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, और भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। भगवान कहते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते पियान्ति परां गतिम्। भगवान ने कहा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप यदि पापियों में बहुत बड़े पापी भी हो, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण और आश्रम में हो, लेकिन यदि आप मेरे शरण में आओगे ते पियान्ति परां गतिम्, तो भी आप इस योग्य हो जाओगे कि आपको परम गति प्राप्त हो। यहाँ पर यही बात श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि मनुष्य भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पूरा ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत बनता है वह शुद्ध भक्त बन सकता है, और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के सुव्यवस्थित संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है, न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। अब देखो यहाँ पर ये बात कितनी, श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि वर्णाश्रम समझ में ही नहीं आता। क्षत्रिय जो होते हैं वो रक्षा चला रहे हैं, जो शूद्र हैं वो राजनेता बने हुए हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो तो है ना, पता नहीं सब्जी बाजी बेच रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि किसका क्या है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना डिस्टर्ब हो गया है कि दोबारा से इसको वापिस से रीमेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि ये नीच पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै, कि कितने ही बड़े पापी हो, भले कुछ भी कर लिया हो पिछले जीवन में, आज यदि किसी शुद्ध भक्त के चरणों को पकड़ लेंगे, श्रील प्रभु चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए हुए जो आचार्य हैं, उस संप्रदाय में यदि हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के चरणों को स्पर्श कर लेते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं, तो फिर सारे विश्व की जो भी प्राणी हैं उनका उद्धार संभव है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेक पूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति पूर्व ग्रह नहीं रखते। मतलब ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो जिनके अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, जो थोड़ा भी सोचने समझने की सलाहियत रखते होंगे ना, वो डायरेक्ट से एक ही काम करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, यानी श्री प्रभुपाद जी ने जो ये इस्कॉन संस्था का ये जो बनाया है उसके अंतर्गत आकर भक्तों को स्वीकार करके, भक्तों के चरणों को स्वीकार करके वो उसी तरह से वैष्णव पद्धति में जिएंगे। और ऐसे लोग वो ये नहीं कर सकते हैं, ये केवल बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति पूर्व ग्रह नहीं रखते, बस यही मेरा काम है, एक यही करना है, हमारे सारे देश वाले यही कर रहे हैं, हमारे सारे समाज वाले यही कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, थोड़ी बुद्धि रखने वाले भगवान के भक्त बन सकते हैं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह के वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान भगवान के आशीर्वाद की कामना की। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी खास बात बता रहे, कुछ लोग होते ना जो गद्दी नशीन होते हैं ना, बस उनकी ही ना पूजा करते हैं। अभी वो क्या है, उसमें उसने जन्म लिया है और इसके बाद गद्दी पर ये बैठा है, तो उसको ही हमें प्रणाम करना है, उसकी ही हमें भक्ति करनी है, भले उसके अंदर कोई क्वालिटी है या नहीं है। लेकिन वैष्णवों को ऐसे नहीं होता है कि बस ये वैष्णव का बेटा है अभी वही गुरु बनेगा, ये इस वैष्णव का बेटा है तो वो गुरु, या फिर उसका शिष्य है तो गुरु। हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या वो क्वालिटीज हैं जो एक शुद्ध वैष्णव के अंदर होनी चाहिए, क्या वो इस काबिल है, क्या वो उत्तम अधिकारी है, क्या उसने अपने सारी इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, क्या उसे मान पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, क्या वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है या अपने आप का नाम बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज को देखने के बाद जो एक शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, उसके चरणों को पकड़ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की नगरणीय सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसके शरीर में तुरंत ही दिव्य परिवर्तन आता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्चे वैष्णव श्राद्धे गुरु शु नरमी नरमती वैष्णवे जातिर बुद्धि श्री वैष्णव नामनी शब्द सामान्य बुद्धि ही। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, ना वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, ना ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण, यानी कि ये सब स्पेशल है। मंदिर में जो भगवान की विग्रह स्थापित होती है तो वो साक्षात भगवान की तरह, जैसे हम भगवान समझो सामने हो, उसको यदि हम प्रार्थना करते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं तो कैसे स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह से विग्रह में भी होता है। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे ऐसे इतिहास है कि विग्रह जो है वो साक्षात अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करती है। और उसी तरह से जो हमारे गुरु महाराज हैं वो साधारण नहीं होते हैं, भगवान के शक्ति आवेश अवतार होते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वैष्णवों को किसी जाति से संबंधित नहीं मानना चाहिए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये वो है नहीं, ये वैष्णव होता है, मतलब वो भगवान का होता है, विष्णु का होता है, कृष्ण का होता है, तो उसके अंदर इतना पावर होता है कि हम जैसे पतितों को भी वो पावन कर सकता है। आगे श्रीमद् प्रभुपाद जी सार रूप में बताते हैं कि निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को, चाहे स्वयं या गुरु रूप में, अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया था और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वृंदावन के गोपियों के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाहम विप्र न च नरपति न वैष्णव न शूद्रा नाहम वर्णी न च गृहपति न वानस्थो यतुर्वा ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचर्य हूँ, न वानप्रस्त हूँ, न ग्रस्त हूँ, न संन्यासी हूँ, किंतु अप्रद्वान निखिलः पूर्णामृतस्तेह गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास। हमारी पहचान यही है, जो गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उनके नहीं, उनके दासों के दासों का दास होना, यही आत्म साक्षात्कार की विधि है कि हमें शुद्ध भक्तों के, शुद्ध वैष्णवों के चरणों का दास बनना है, उसी से संभव है। कृष्ण भक्ति वहीं से प्राप्त होगी जब हम भगवान के भक्तों के चरणों की धूल को अपने सिर पर लगाएंगे। राजा रघुगण को जड़ भरत अपनी शिक्षा में बताते हैं, वे कहते हैं, रघुगणेश तपस्या नयांति। हे राजा रघुगण, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते, न छंदसा न अग्नि, ना ही अपने आप को अग्नि में जलाने से, न योग करने से तब भगवान नहीं मिलते। तब राजा रघुगण बोलते हैं कि फिर भगवान कैसे मिलते हैं। तब जरब्रत जी बताते हैं कि विना महत पाद रजो भीषेक। जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक नहीं करते, जब भगवान के चरणों की रज को, भगवान के भक्तों की चरणों की रज को अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर धारण नहीं करते, अर्थात उनकी सेवा नहीं करते, उनके उपदेश को श्रवण नहीं करते, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते नहीं है, उनकी बताए हुए एडवाइस को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवत प्राप्ति का एक ही तरीका है, अपने अपराधों को खत्म करने का एक ही तरीका है, हृदय की मलिनता को खत्म करने का एक ही तरीका है, भगवत धाम में जाने का एक ही तरीका है कि हम शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय ले लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो गया है और मैं लेक्चर करते करते भी बहुत दुख रहा होता है, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। आप सब कृपया भगवान से कहिए कि मेरी सेवा और साधना को मैं अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।